ये सारे
स्वप्न अ ड्रीम
स्वप्न
निद्रा इन स्लीप
नींद
अनुग्रह अकरिंग
घटित होने वाले
यथा जस्ट एज
जिस तरह
सो प्रभु जी यू रीड ट्रांसलेशन
अनुवाद बच्चों पत्नी संबंधियों तथा मित्रों की संगति यात्रियों के लघु मिलाप जैसी है शरीर के प्रत्येक परिवर्तन के साथ मनुष्य ऐसे संगियों से उसी तरह विलग हो जाता है जिस तरह स्वप्न समाप्त होते ही स्वप्न में मिली हुई सारी वस्तुएं खो जाती हैं कृपया दोहराएं बच्चों पत्नी संबंधियों तथा मित्रों की संगति यात्रियों के लघु मिलाप जैसी है शरीर के प्रत्येक परिवर्तन के साथ मनुष्य ऐसे संगियों से उसी तरह विलग हो जाता है जिस तरह स्वप्न समाप्त होते ही स्वप्न में मिली हुई सारी वस्तुएं खो जाती हैं तात्पर्य पांत संगम सूचक है होटलों भोजनालयों पर्यटन स्थलों या अधिक पारंपरिक सांस्कृतिक स्थानों में ताजे पानी के कुएं तथा पगडंडियों में मुसाफिरों के क्षणिक साथ का इस समय हम तमाम संबंधियों मित्रों तथा हितैषियों से संबंध है किंतु अपने भौतिक शरीर के परिवर्तित होते ही हम इन संगियों से उसी तरह पृथक हो जाएंगे जिस तरह जग जाने पर हम स्वप्न की काल्पनिक वस्तुओं से तुरंत विलग हो जाते हैं जिस तरह मनुष्य अपने स्वप्न के विषय भोगों में लिप्त हो जाता है उसी तरह अहम मम की भ्रामक धारणाओं के जाल में हम तथा कथित संबंधियों तथा मित्रों से लिप्त हो जाते हैं जो हमारे मिथ्या अहंकार को तुष्ट करते हैं दुर्भाग्यवश ऐसे क्षणिक अहम मन्यवादी संग आत्मा तथा भ्रम संबंधी हमारे असली ज्ञान को प्रच्छन्न कर लेता है और हम मायावश स्थाही इंद्र तृप्ति के लिए व्यर्थ मंडराते रहते हैं जो व्यक्ति परिवार तथा मित्रों की देहात्म बुद्धि में लिप्त रहता है वह अहम मम के मिथ्या अहंकार को या मैं सब कुछ हूं और सब कुछ मेरा है नहीं त्याग पाता जब तक हम भौतिक इंद्र तृप्ति का परित्याग नहीं कर देते तब तक हम भक्ति के दिव्य पद पर स्थिर नहीं हो सकते अतएव हम नित्य सुख का रसास्वाद नहीं कर सकते जब तक मनुष्य भगवान कृष्ण को अपना एकमात्र मित्र मानकर भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन जाता तब तक वह क्षणिक तथा दिखावटी भौतिक संबंधों की लालसा को त्याग नहीं पाता अपने घर से तथा प्रियजनों से दूर पथिक अन्य यात्रियों से बातें करता है किंतु ऐसे संबंधों का कोई अर्थ नहीं होता अतएव मनुष्य को भगवान कृष्ण से अपने खोए संबंध को पुनर्जीवित करना चाहिए हम स्वभावतः भगवान कृष्ण के भिन्नांश हैं, जो कि समस्त आध्यात्मिक आनंद के आगार हैं, और उनके साथ हमारा मौलिक संबंध प्रेम तथा सुख से पूर्ण है किंतु उनसे स्वतंत्र रहकर भोग करने की हमारी इच्छा से ही हम माया के भौतिक संबंधों के चकरा देने वाले व्यर्थ जाल में फंसते हैं बुद्धिमान व्यक्ति यह अनुभव करता है कि श्लोक में या अन्य किसी भौतिक लोक में आत्मा को आनंद या संतोष नहीं है अतएव उसे शांत पथिक की तरह शांति के लिए श्री कृष्ण के आज्ञाकारिक सेवक की भांति भगवत धाम वापस जाना चाहिए
होमगिना तिमरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः
धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण
सो This is
a wonderful verse and an ecstatic purport by the disciples of Srila Prabhupada. तो एक बहुत ही अद्भुत श्लोक है और इसका तात्पर्य भी इतना ही अद्भुत है. श्रीला प्रभुपाद के शिष्य द्वारा ये तात्पर्य लिखा गया है.
And Krishna is making some very valuable points.
और भगवान कृष्ण यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं.
And if we can just deeply embrace what Lord Krishna is saying, we will make rapid progress in our spiritual life.
और जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं, अगर हम उसको गहराई से उसका आलिंगन कर लें, तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत तेजी से प्रगति करेंगे.
Srila Prabhupada often gave the example of many pieces of straw collecting together, intertwined with each other, and there's like some floating on the ocean, some group of pieces of straw that are all interconnected.
Srila Prabhupada अक्सर ये उदाहरण दिया करते थे कि कैसे अलग-अलग तिनके अगर एक साथ आपस में हल्के से चिपके हों और लहरों पर साथ साथ आगे जा रहे हों.
So Sangha means this connection of many things together in a group.
Sangha का अर्थ यही है कि अन्य कई वस्तुएं आपस में संबंधित हैं एक ग्रुप के अंदर.
The Prabhupada explains that when the wave comes close to the beach and the wave rises up and crashes down on that pile of straw that is all netted together like this, all the pieces of straw get separated by the force of the wave.
Srila Prabhupada उदाहरण देते थे कि जैसे ही समुद्र में कोई लहर तट के करीब आती है, हल्की सी ऊपर बढ़ती है, और जैसे ही उस जो तिनके का समूह है उस पर पड़ती है, तो सारे तिनके हैं अलग अलग हो जाते हैं.
And in this wonderful verse, Lord Krishna is explaining that our material relationships are very fleeting, very temporary. They last only a short time.
उसी प्रकार से इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो इतने हमारे संबंध हैं यहाँ पर वो बहुत ही क्षणिक हैं, बहुत ही अल्प समय के लिए आपस में वो संबंध रहते हैं और उसके बाद भिन्न भिन्न हो जाते हैं.
And then Krishna beautifully describes that when the body changes, then whatever we were having in our mind, whatever the idea of this is my mother, this is my father, this is my country, all of that becomes also shattered and the soul is in complete forgetfulness of his situation in his previous life once he leaves the body.
और आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो जितनी उसके मन में धारणाएं होती हैं कि ये मेरे संबंधी है, मेरे इनसे ये रिश्ता है, वो बिल्कुल ही भूल जाता है, अलग हो जाता है.
So therefore he gives an example about a dream that one falls asleep and he dreams at night that the man may be dreaming he's embracing some beautiful woman. Woman may also have the dream that some prince charming, wonderful, handsome fellow has come and she's happily embracing this very handsome man.
और स्वप्न का उदाहरण दिया गया है. मान लीजिए स्वप्न में कोई पुरुष ऐसा स्वप्न देख रहा हो कि वह सुंदर स्त्री का आलिंगन कर रहा है, और कोई सुंदर स्त्री इस प्रकार का स्वप्न देख रही है कि कोई राजकुमार आया हुआ है और उसके साथ वो है.
But Krishna explains it just as we wake up from the dream. Then we realize that we have lost what we thought we possessed while we were dreaming.
तो भगवान कृष्ण ये समझाते हैं कि जैसे ही वो व्यक्ति स्वप्न से जागता है तो वह उन चीजों को उसी प्रकार जो वह सोच रहा था कि ये चीजें मेरे साथ हैं उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता.
So this is a wonderful verse and these disciples of Srila Prabhupada have given a very nice explanation in the purport.
तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक है और श्रील प्रभुपाद के शिष्य ने इस पे बहुत ही अच्छा तात्पर्य दिया है.
A dream is an imaginary thing. Prabhupada says dream means it is hallucination.
स्वप्न एक कल्पना है बिल्कुल.
Some dreams may be spiritual dreams. Guru may come in the dream. In Chaitanya Charitamrita, so many times advanced devotees would have the Lord come and in a dream and give him some instruction to go here, go there, serve like this. But in the general sense, Prabhupada says, dreaming means the mind is simply hallucinating.
साधारणता स्वप्न का अर्थ यही होता है कि जो मन है पूर्ण रूप से कल्पना कर रहा है. हो सकता है कुछ स्वप्न सत्य हो, जैसे अध्यात्मिक जो स्वप्न होते हैं जिसमें गुरु प्रकट हो या भगवान प्रकट हो. श्री चैतन्य चरितामृत में हम अक्सर ये संदर्भ पढ़ते हैं कि कैसे उन्नतशील भक्तों के स्वप्न में भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उनको निर्देश दिए.
And in the middle of the dream, right in the middle of all the activity in the dream, whether it's flying in the sky or running away because the tiger is chasing him, or so many things happen in dreams, you're driving some Lamborghini or Ferrari car that costs 2 crores of rupees, and you're thinking, I'm so happy I finally have such a beautiful car. We're thinking like that in the dream.
और जब स्वप्न चल रहा हो, जब हम स्वप्न के बीच में हो, चाहे हम आकाश में कहीं उड़ रहे हो या भाग रहे हो कि पीछे शेर पड़ गया है, या हम कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो फेरारी जो 2 करोड़ रुपए की आती है, और आपको लगे कि हाँ वास्तविकता में जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया.
When you wake up from a dream when a tiger was just about to pounce on you, you wake up, you're still even nervous from the dream, but you're very happy. Thank you. I'm not being eaten by the tiger. It means that was some illusion. The dream was some illusion.
परंतु जैसे ही आप स्वप्न से जाग जाएं, जैसे ही आप पे शेर बिल्कुल कूद मारने ही वाला था, वैसे ही आपको स्वप्न टूट जाए और आप जाग जाएं, तो आपको कितना रिलीफ मिलता है, कितना सुकून मिलता है, अच्छा ये स्वप्न था.
So in the same way, we can become attached to something in a short period of time during the state of dreaming. We also, in our lifetime, material lifetime, this is primarily for materialistic people, they become very attached to what appears to be their mother, their father, their country, their society they live in. They become attached to all of these material things.
जैसे कोई व्यक्ति अपने स्वप्न एक क्षणिक स्वप्न से बहुत आसक्त हो सकता है, उसी प्रकार एक भौतिकवादी व्यक्ति अपने इस जीवन में जो भौतिक जीवन है उनके संबंधों को लेकर बहुत आसक्त हो सकता है कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे माता हैं, ये मेरा देश है.
Maya perceives us, Maya, excuse me, Maya bewilders us by creating a false and misleading impression of reality.
Maya हमें पूर्ण रूप से विमोहित कर देती है एक सत्य की एक गलत परछाई दिखाकर.
Maya, primarily to bewilder the conditioned souls, she forces this mode of passion and ignorance. And because of passion and ignorance, one becomes completely bewildered and has no sense of his spiritual identity whatsoever.
तो रजोगुण और तमोगुण के कारण जो माया है हमें पूर्ण रूप से भ्रम में डाल देती है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता.
And in that bodily concept of life, which is simply a mental concoction, the soul is never connected at all with the body. But the mental concoction that is forced upon us by the lower modes of nature makes us think we are this body.
और जो जीवात्मा है, इस देहात्मक बुद्धि के कारण वास्तविकता में इस आत्मा का इस देह से कुछ भी लेना देना नहीं है, पर
And similarly, having this bodily conception of life, that conception of I and mine, my family, my country, my job, my bank balance, my sense gratification, all of that is the bewildering potency of Maya Shakti. Until we give up the concept of I and mine, which again is influenced us by the modes of nature, until we give it up, we cannot make progress spiritually.
और जब तक हम इस मैं और मेरा की धारणा को छोड़ नहीं देंगे, तब तक हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे.
We simply push ourselves forward, accepting one thing, rejecting something else, hankering for this thing and being bewildered when it doesn't happen the way we want it. So mind is constantly disturbed by the conditioned soul.
और हम आगे कैसे बढ़ चलेंगे पूरे मन के धरातल पर एक चीज को स्वीकार करेंगे दूसरी चीज का त्याग कर देंगे फिर उसको स्वीकार करेंगे उसको त्याग कर देंगे
I would like to share something about this daydream night dream that Prabhupada speaks of you may have read it in his conversation books there's some three times that I've been able to find where Prabhupada describes daydream and night dream so I'm going to share that with you
तो शिला प्रभुपाद ने अपने वार्तालाप में प्रभुजी बता रहे हैं मैंने एटलीस्ट तीन अलग जगह इसके विषय में पढ़ा है जहां प्रभुपाद इसका उल्लेख करते हैं कि दिन का स्वप्न और रात का स्वप्न
I'm just going to share one out of three that I've discovered, one page. So some young person had met the devotees. They had preached to him about how we're not the body and how we're eternal souls and we don't belong in this world. So this person wanted to meet Prabhupada and he happened to be in that vicinity. So there's a brief conversation between this person who's asking a few questions and Srila Prabhupada replying to them.
तो ये युवक जो है भक्तों से मिला था और भक्तों ने उनको प्रचार किया था कि आप ये शरीर नहीं आप आत्मा हो और ये सब सुनने के बाद वो व्यक्ति शिला प्रभुपाद से मिलना चाहता था और शिला प्रभुपाद उस समय पास में ही थे तो भक्त लोगों ने उनको प्रभुपाद के पास ले गए तो जो ये वार्तालाप हो रहा है वो व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछ रहा है और शिला प्रभुपाद उसका उत्तर दे रहे हैं
सो ही बिगिंस बाय स्पीकिंग टू शिला प्रभुपाद आस्किंग अ क्वेश्चन saying, taking into account that we are not these bodies. Taking into account means accepting the fact that we are not these bodies.
तो व्यक्ति इस प्रकार से प्रश्न पूछना शुरू करता है कि अगर हम इस बात को स्वीकार करें कि हम ये शरीर नहीं हैं,
we are actually the soul.
और हम आत्मा हैं.
What do we understand when we dream? That's the question he's asking Prabhupada. He was intellectually understanding that we're the soul, not the body, but he's asking, what do we understand is going on when we dream?
तो जब स्वप्न हो रहा होता है, तो उसको हम कैसे समझें? वो बुद्धि के स्तर पर समझने का प्रयास कर रहा था कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो एक स्वप्न जो मैं देख रहा हूँ, उसको मैं किस प्रकार से समझूँ?
So Srila Prabhupada answered, dreaming is hallucination.
तो शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिया जो स्वप्न है वो मनोकल्पना है
इट इज द बिजनेस ऑफ द माइंड
इज द बिजनेस ऑफ
इट इज द बिजनेस ऑफ द माइंड ड्रीमिंग इज द बिजनेस ऑफ द माइंड
ये मन का कार्य है
द माइंड इज क्रिएटिंग सम अदर बॉडी इन द ड्रीम
जो मन है एक सूक्ष्म शरीर बना रहा है स्वप्न में
जस्ट लाइक इन अ ड्रीम यू आर थिंकिंग यू हैव गॉट अ बॉडी फ्लाइंग इन द स्काई
जैसे कि आप स्वप्न में देख रहे हैं आपको एक ऐसा शरीर मिला है जिससे आप आकाश में उड़ रहे हैं
सो इवन इन द ड्रीम यू फॉरगेट दैट यू हैव गॉट अनदर बॉडी व्हिच इज लाइंग ऑन द बेड सो व्हाइल यू आर ड्रीमिंग दैट यू फ्लाइंग इन द स्काई यू साइमल्टेनियसली फॉरगेट दैट द फिजिकल बॉडी इज लेइंग देयर
तो जैसे आप स्वप्न में आप इस शरीर के अंदर हैं कि आप उड़ रहे हैं तब भूल जाते हैं कि आपका एक शरीर ऐसा है जो लेटा हुआ है
जस्ट लाइक लास्ट नाइट नॉट सो फार अवे नियर बाय वी टुक रेस्ट इन ऋषिकेश प्रभुज फैमिलीज होम सून एज आई फेल अस्लीप आई फॉरगॉट आई वाज इन दिल्ली व्हेन आई वाज ड्यूरिंग द डे आई रिमेंबर बट व्हेन सून एज आई फेल अस्लीप आई डिडंट नो आई वाज इन दिल्ली आई डिडंट नो आई वाज इन इंडिया एंड ऑल ऑफ अस हैव दैट फॉरगेटफुलनेस एज सून एज वी स्लीप
तो ये बता रहे हैं यहां से कुछ ही दूर ऋषिकेश प्रभु के परिवार में वो जहां रुके हैं वहां पे जैसे ही प्रभु ने विश्राम किया मैं तुरंत भूल गया सोते ही कि मैं दिल्ली में हूं या मैं भारत में हूं और ऐसा शायद हम सबका अनुभव होगा कि कैसे निद्रा के आने से हम तुरंत ये भूल जाते हैं
सो श्रील प्रभुपाद गोज ऑन टू टेल हिम द माइंड क्रिएट्स बाय डिफरेंट डिजायर्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी
जो मन है अलग इच्छाओं के कारण एक अलग प्रकार का शरीर का निर्माण करता है
एंड वी देन फॉरगेट द प्रीवियस बॉडी
और तब हम अपने पूर्व जीवन के बारे में भूल जाते हैं
प्रभुपाद सेज जस्ट एज व्हेन यू आर ड्रीमिंग
जैसे आप स्वप्न देख रहे हो
यू फॉरगेट दैट यू आर लाइंग ऑन द बेड
आप भूल जाते हैं कि आप बेड पर पड़े हैं
And in your dream, you're acting in a completely different way.
और अपने स्वप्न में बिल्कुल अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं.
So similarly, we had our past body, means previous life before that, we had a body, different body.
उसी प्रकार हमारा पिछला जन्म भी था, हमारा कोई पूर्व देह भी था.
But we have forgotten it.
परंतु हम उसको भूल चुके हैं.
Death means forgetfulness.
मृत्यु का अर्थ है ये भूल जाना.
We forget everything about our past. That is death.
हम अपने पूर्व के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं. ये मृत्यु है.
When we're dreaming, we are forgetting this body, means the physical body we have that's lying on the bed. While we dream, we forget this body.
जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं, तो हम अपने इस भौतिक शरीर जो बेड पर पड़ा हुआ है वर्तमान में, हम इसको भूल जाते हैं.
But because it is not death, we are coming back again into this physical body.
परंतु क्योंकि ये मृत्यु नहीं है, इसलिए हम इस शरीर में वापस आ जाते हैं.
And in the morning, when we wake up, we think, "Oh, I have to do this. I have to do that."
और जब हम सुबह जागते हैं, तो मुझे लगता है, "Oh, मुझे ये कार्य करना है, मुझे वो कार्य करना है."
But at night, when dreaming, we simply forget everything.
और जब रात्रि में हम स्वप्न देख रहे होते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं.
He says, "So this dreaming is another sample of death."
तो इसलिए ये जो स्वप्न है मृत्यु का एक अलग सैंपल है.
Sample means in the dream we forget this body that's laying on the bed and we're flying in the sky. So sample of death means when we leave this body, all our past lifetimes will be completely forgotten.
जैसे हम स्वप्न में कोई कार्य कर रहे होते हैं और अपने इस शरीर के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, उसी प्रकार से सैंपल कैसे हुआ, मृत्यु के समय जब हम एक नया शरीर धारण करते हैं तो पूर्व जीवन के बारे में हम सब कुछ भूल जाते हैं.
एंड इट्स वेरी इजी टू प्रूव, एब्सोल्युटली प्रूव दैट वी फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन आवर प्रीवियस लाइफ और टू लाइव्स बैक और थ्री लाइव्स बैक. इट्स वेरी क्लियर दैट ऑल ऑफ अस फॉरगेट दोस थिंग्स.
और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा पिछले जीवन में क्या हुआ, दो जीवन पहले क्या हुआ, तीन जीवन पहले क्या हुआ. इसको स्थापित करना बहुत ही सरल है.
Everyone sitting here today has some family members.
आप में से जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं, उन सबके परिवार के सदस्य हैं.
Can be mother and father, maybe also grandmother, grandfather.
शायद माता पिता, शायद दादा दादी.
And you can have brothers and sisters, second cousins. So many relatives may be there. Some of you may have 20 or 30 or 40 relatives if you have a big joint family.
तो इतने सारे हमारे संबंधी हो सकते हैं. कहीं अगर कहने की joint family है तो हो सकता है 20, 30, 40 सदस्य भी हों.
And if I ask you to give me the names of all the family members you could think of, you will very easily give me so many names, 10 names, 20 names, 30 names.
और अगर मैं आपको उन सबके नाम देने के लिए कहूँ तो आप बहुत सरलता से उन सबके नाम दे दोगे, 10 नाम, 20 नाम, 30 नाम.
But I'm not going to ask you to give me a big long list of names.
परंतु मैं आपको भी एक ऐसा करने के लिए नहीं कहूंगा.
I just want you to give me one name of one of your family members.
मैं आपको कहूंगा कि आप सिर्फ एक नाम दें अपने इन परिवार के सदस्यों.
It can be your wife, or if you're in a woman's body, it could be your husband. That name is fine.
अब वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, या अगर आप महिला के शरीर में हैं तो आपके पति भी हो सकते हैं.
Or mother or father or grandmother, grandfather, nana, nani, any of those, you can give any of those names. Children's names also fine. One name.
तो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी एक नाम.
I want you to raise your hand if you can give me the name of just one family member from the previous life, not this life. Raise your hand. Very high.
तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं कि आप अगर एक भी नाम बता दें अपने पिछले जीवन मैं जब आप थे उनके परिवार सदस्यों का.
We're going to count. Please put your hand up. One name from last life. Please put.
एक नाम पिछले जीवन का.
No.
कृपया हाथ खड़ा करें.
Proof. Is that proof? Proof. We know. What did Krishna say in Bhagavad Gita to Arjuna? I think it's chapter 4, text 5. He said, many, many times you and I have taken birth. I can remember all of them. You cannot remember them.
जैसे भगवान कृष्ण चौथे अध्याय में कहते हैं कि बहुत सारे जन्म मैंने और तुमने दोनों ने लिए हैं. मैं इन जन्मों के बारे में सब जानता हूं, तुम नहीं जानते अर्जुना.
सो डेथ मीन्स फॉरगेटफुलनेस.
तो इसलिए मृत्यु का अर्थ है बुढ़ापा.
Anyway, it makes sense that Krishna, we know from 15:15 in Bhagavad Gita, said apohanam. Apohanam means forgetfulness.
और ये जो भुलापा एक आता कहाँ से है? भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में कहते हैं कि ये मुझसे ही आता है.
And Krishna, to fulfill our desire to independently enjoy, he gives us some free will. And yet, when we end one life and leave that body, Krishna sees to it that we start with a brand new clean slate in our mind, and we go on fantasizing in our material life that I am enjoyer.
तो जब हम भगवान कृष्ण से विलग होकर स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण ने हम सबको ये स्वतंत्र इच्छा, थोड़ी मात्रा में स्वतंत्रता दी है, और इसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते. इसलिए जब एक नया शरीर हमें प्राप्त होता है और मन पूरा साफ होता है एक नए स्लेट की तरह, तो दोबारा से वो व्यक्ति एक भोक्ता बनने का प्रयास करता है.
So Prabhupada goes on one more half page here. He goes on to explain that not only do we dream at night, our activities during the day is simply also dreaming.
और शिला प्रभुपाद आगे इस बात की व्याख्या करते हैं, हमारी रात्रि में जो हम स्वप्न में जो कार्य करते हैं वो तो स्वप्न होता ही है, तो जो हम दिन में कार्य कर रहे हैं ये भी एक स्वप्न है.
During the day we're claiming so many things as our property. This car, this is my car. This bungalow, my beautiful bungalow with a nice garden and everything, this is mine. This other thing is mine. And this, all this money in the bank that I have deposited, that is also mine. This is a dream state. Everything is Krishna's property, but we are dreaming that it's mine.
जो दिन के समय हम इतने सारी चीजों पर जो उसको हम अपना माने बैठे हैं कि मेरा बंगला है, ये मेरा धन है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी गाड़ी है, ये सब वास्तविकता में भगवान कृष्ण का है, परंतु इस पे हम अपना प्रभुत्व जमाते हैं, इसको अपना मानते हैं, ये एक स्वप्न है.
So Prabhupada had said, the last thing he said to this young man was, this dreaming is another sample of death.
और तो ये आखिरी में शिला प्रभुपाद ने कहा कि ये स्वप्न देखना ये मृत्यु का एक सैंपल है.
And the boy was little confused, so he said, sample of death?
तो जो ये युवक था जो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मृत्यु का सैंपल?
And Prabhupada said, yes, death.
तो शिला प्रभुपाद ने कहा हां मृत्यु.
As you are dreaming at night, this is night dream, so our material life is daydream.
तो जैसे कि आप रात्रि में स्वप्न देख रहे हैं, तो हमारा जो भौतिक जीवन है ये दिन का स्वप्न है.
This is also a dream. The daytime activity, this is also a dream.
ये भी स्वप्न है जो हम दिन में कार्य कर रहे हैं भौतिक जीवन में.
He says, because what we create in the dream, that does not actually exist.
क्यों? क्योंकि जो भी हम स्वप्न में जिस चीज का निर्माण करते हैं उसको वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं होता.
Just like I gave a few examples, driving some very costly car, 2-3 crores of rupees for some famous big so-called top-notch car. So that is, we're dreaming that it's ours. We're driving it. We're so happy to be driving it. We're very proud of it. Everyone is looking at it, how nice it looks. But that is simply an illusion. It is simply dreaming.
तो जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, कोई वास्तव में बहुत ही महंगी कार, 2-3 करोड़ रुपए की कार है, उसको ड्राइव कर रहा है और ये समझे बैठा है कि ये कार मेरी है, तो ये एक स्वप्न है.
So he's saying, what we create in our night dream, that does not exist. It exists for a few minutes only.
जो भी हम रात्रि के स्वप्न में निर्माण करते हैं वो सिर्फ कुछ क्षणों के लिए ही एग्जिस्ट करता है.
So then he says, so this day dream means activity during the day like this now, day is awakened. So by this daydream also exists for a few years only, that's all.
इसलिए जो ये दिन का स्वप्न है सिर्फ कुछ सालों के लिए ही इसका अस्तित्व रहता है बस.
This is also a dream, means daydream. It is also a dream.
ये भी एक स्वप्न है, दिन का स्वप्न.
It is simply for a few years.
परंतु ये सिर्फ कुछ ही वर्षों के लिए है.
But the person who is dreaming, that is the spirit soul.
परंतु जो व्यक्ति जो स्वप्न देख रहा है वो है जीवात्मा.
So Prabhupada says, So we have to understand and come to that spiritual platform to know I am not this body, I am eternal soul.
तो इसलिए हमें समझने के लिए आध्यात्मिक धरातल पर आना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ.
That is your real business, not dreaming either in the day or at night.
ये आपका असली कार्य है, रात्रि में स्वप्न देखना और ना ही दिन में स्वप्न देखना, ये असली कार्य नहीं है.
That is not the business for human being.
ये एक मनुष्य के लिए एक ऐसा ये कार्य नहीं है.
Just try to understand.
सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए.
As dreaming at night is for a few minutes.
कि जैसे रात्रि का जो स्वप्न है कुछ क्षणों के लिए होता है.
5 minutes, 10 minutes, maybe 1/2 hour.
5 मिनट, 10 मिनट, शायद 1-1.5 घंटे के लिए.
Then it breaks and everything is lost.
और जैसे ही वो टूटता है सब का सब खत्म हो जाता है.
I've had dreams sometimes when something very serious was going on in the event of my dream, and I thought, I have to get this done. Oh, this is so important. I was urgent. I had this very strong sense of urgency.
मेरे को अक्सर ऐसे स्वप्न आए हैं कि जिसमें बहुत ही गंभीर विषय चल रहा है और मैं उसको बहुत ही गंभीरता से ले रहा हूं, बहुत ही अर्जेंट है.
In the dream it seems so important that this must get taken care of right now.
वो स्वप्न में इतना महत्वपूर्ण दिखता है कि उसका अभी उसको तुरंत उसे डील करना बहुत ही गंभीर विषय बन जाता है.
And then when the cell phone sound comes on, where we put it on some note where you can hear the sound to wake up, to wake yourself up like an alarm. When the alarm comes from the phone, at first you start to wake up a little bit from the dream, but you're not fully awake for some few seconds. You're still thinking, holding on to this idea, oh, this is very important, I have to get this done.
और परंतु जैसे ही सेल फोन का अलार्म बजना प्रारंभ होता है तो ऐसा नहीं तुरंत आप स्वप्न से जाग जाते हैं, हल्का हल्का स्वप्न से जागने उस फेज में होते हैं.
And as you start to wake up a little more, become more conscious, waking up from the sleep and dream state, then you start questioning. Oh, I think I have to do this. You're not so sure now, it's not so urgent, but you're still thinking, I think I have to finish this.
और जैसे ही आप थोड़ा और चेतन अवस्था में आते हैं तो फिर आपको धीरे धीरे लगता है मेरे को शायद ये कार्य करना चाहिए.
And then as soon as you become more conscious and fully begin to look around, you think, oh, only a dream.
और जैसे कि आप पूर्ण रूप से चेतन हो जाते हैं और आसपास देखते हैं तो आप कहते हैं, ओह, ये स्वप्न था.
Then you feel relieved. Oh, so glad. I'm so glad to know that was just a dream.
और आप इतना सुकून महसूस करते हैं कि ये सिर्फ एक स्वप्न ही था.
I had one where I woke up just as the tiger had jumped in the air. He was chasing me. And I was very fearful, and I was running as fast as I could, but he was catching up very quickly, and just as he was leaping in the air, somehow, I woke up, I was perspiring and very fearful, but as soon as I woke up, I thought, oh, Hare Krishna.
तो मुझे एक बार स्वप्न आया कि जिसमें शेर मेरा पीछे कर रहा था और मैं आगे भाग रहा था और शेर भागता हुआ मेरे पास आया और ऊपर उसने छलांग लगाई और मेरे को ऊपर बस पहुंचने ही वाला था, तभी मेरा स्वप्न टूटा और मैं जाग गया और मैं देखा शरीर से पसीना निकल रहा था और मैंने कहा, ओ हरे कृष्णा.
So Prabhupada says, as dreaming at night is for a few minutes only, 5 or 10 minutes or half an hour, then it breaks. Similarly, this material life is also dreaming for some years.
जिस प्रकार से रात्रि का स्वप्न सिर्फ कुछ क्षणों के लिए होता है, 5-10 मिनट के लिए, तो ये जो दिन का स्वप्न है, जो भौतिक जीवन है, ये कुछ ही वर्षों के लिए होता है.
Prabhupada says, say for 50 or 60 or utmost 100 years.
50 वर्ष के लिए, 60 वर्ष के लिए, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष के लिए.
Then everything is finished. Mrityu sarva harashtaham.
और उसके बाद फिर सब चीज खत्म हो जाती है मृत्यु के साथ.
Listen to what Prabhupada describes mrityu as.
अब आप सुनिए कि श्रील प्रभुपाद ने मृत्यु को कैसे समझाया.
मृत्यु, death. मृत्यु means taking away everything what you have created by your dreaming. That is mrityu. That is death. Taking away everything.
मृत्यु का अर्थ है उन सभी चीजों को आपसे छीन लेना जो आपने इस स्वप्न में बनाया है.
भक्तिविनोद ठाकुर said, in the very beautiful prayer, why then this childish play in that which cannot be our own, which falls within 100 years as if a rose ablow? Why then this childish play in that which cannot be our own?
Shrila Bhakti Vinod Thakur.
Yes.
ने इस प्रकार कहा है कि जैसे बच्चे खेल खेलते हैं.
Yeah, he's saying that our life is foolish. Materialistic people, not for devotees, but the materialists, their life is completely foolish. They're ignorant. They have no idea their connection with God. They think they're the enjoyer. So Bhakti Vinod is saying, why then this childish play? All these activities throughout your whole life, it's like childish play. There's no spiritual maturity at all. So he says, why then this childish play in that which cannot be our own? In other words, whatever we so-called collect in this world, it's all God's property, and we cannot hold on to it no matter how tightly we grip it. It will be taken away from us at death.
तो जैसे कि जो भौतिकवादियों का जीवन होता है, उनका पूरा का पूरा जीवन उन बच्चे के खेल के समान है, जिसमें बच्चे आपस में आते हैं, खेल में बोलते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, परंतु वो वास्तविकता में उनका नहीं होता. उसी प्रकार से जो पूरा भौतिकवादी जीवन है, ये पूरे बच्चों के खेलने के समान है.
That is why death is so painful, because we are attached. Rati means some attachment. We have attachment for so many glittering material things. And we gather as much as we can for a life of so-called comfort. And then death comes and we are so foolish, we have no idea what will happen.
और इसलिए मृत्यु इतनी दर्दनाक होती है. जो व्यक्ति अपने इन क्षणिक चीजों से जितना ज्यादा आसक्त होता है, उतनी ही दर्दनाक उसके लिए वो मृत्यु होती है, क्योंकि मृत्यु के समय वो सब सारी चीजों से छीन ले जाती है.
So Prabhupada is finishing up with his points. He says, as soon as this body is changed, when the soul leaves the body, as soon as the body is changed, you forget everything.
और जैसे ही वो जीवात्मा अपना शरीर बदलती है, तो तुरंत वो सारा पूर्व जन्म का सब कुछ भूल जाती है.
You forget that I was Mr. Such and Such. I was African. I was American. I was European. Black or white. Everything is forgotten. Finished.
कि मैं ये तथाकथित ये था, मैं अफ्रीकन था या अमेरिकन था, मैं इस देश का था, अब सब कुछ अब भूल जाते हैं.
So then he says, so this daytime life, this is also dreaming.
तो इसलिए जो दिन में कार्य कर रहे हैं, ये भी एक स्वप्न है.
And as in dreaming, sometimes we see, here he's giving the example of the tiger. Sometimes we see the tiger has attacked me at night.
जैसे कि हम स्वप्न में देखते हैं कि एक शेर ने मेरे पर आक्रमण कर दिया है.
Or a goat has come with his big horns and he's trying to crush me.
और कि जैसे कि एक बहुत बकरी अपने बड़े-बड़े सींग के साथ आ गई है और मेरे ऊपर भाग रही है.
But as there is no goat, no tiger, still you are dreaming that there is goat, there is tiger.
परंतु वास्तविकता में बकरी या जो सींग है, शेर है, वो नहीं है, परंतु आप स्वप्न में देख रहे हैं कि वो है.
Then he says, similarly in this life also we are creating. He is my enemy. And he over there is my dear friend.
और उसी प्रकार से हम इस दिन के स्वप्न में इस प्रकार से निर्माण कर रहे हैं कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है.
This is also a dream.
ये भी एक स्वप्न है.
Nobody is your enemy and nobody is your friend.
कोई भी आपका शत्रु नहीं है और कोई भी आपका मित्र नहीं है.
We have created all this by our dreaming, daydream, night dreams.
ये सब हमने स्वप्न से ही बनाया है, रात्रि का स्वप्न, दिन का स्वप्न.
So therefore we have to get out of this dreaming situation and come to the platform of Krishna consciousness.
इसलिए हमें इस स्वप्न अवस्था से बाहर निकलना चाहिए और कृष्ण भावनामृत के स्तर पर आना चाहिए.
So we should learn from what Prabhupada has just explained.
तो इसलिए हमें सीखना चाहिए जो श्रील प्रभुपाद ने समझाया.
That as much as we have affection for our family members, our neighbors, our co-workers, our friends, just as we have that affection for those people,
कि जैसा हमारा अपने परिवार सदस्यों के प्रति स्नेह होता है, या अपने संबंधियों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति,
we have to understand that, that those relationships are extremely temporary. They will only last for a short time and they will be broken apart just like the straws got broken apart by the crashing of the wave.
तो हमें समझना चाहिए कि सारे संबंध बहुत ही क्षणिक हैं और ये बिल्कुल निश्चित रूप से अलग होंगे ही जिस प्रकार से एक समुद्र की लहर आती है और जो तिनके का ढेर है उस पर पड़ती है और सारे तिनके अलग अलग हो जाते हैं.
These family relationships, these neighbor relationships, they are completely on the temporary material level.
कि ये जो परिवार का आपस में संबंध है, हमारे पड़ोसियों का आपस में जो संबंध है, ये भौतिक स्तर पर है और क्षणिक है.
Karanadakashai Vishnu laying in the causal ocean with the universes coming out of the pores of his body when he's in this yoga nidra sleep, they all expand out and all of these universes are put into space, and then when he breathes in all of them come back in. This exhalation and inhalation of Mahavishnu goes on and on and on perpetually.
Karundakshay Vishnu जब योग निद्रा में होते हैं तो उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं. जैसे वो श्वास लेते हैं, जैसे श्वास अंदर लेते हैं, सारे असंख्य ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाते हैं.
So if we don't become serious about Krishna consciousness, what to speak of those who are having no interest at all in God? If we don't become serious, it may take many lifetimes before we awaken our pure love for Krishna.
तो अगर हम कृष्ण भावनामृत में गंभीर नहीं बनते और उनकी बात तो क्या कहा जाए जिनका कोई भी रुचि नहीं है भगवान के विषय में, तो बहुत सारे जीवन लग सकते हैं इससे पहले कि हम भगवत प्रेम हमारे अंदर वो जागृत हो.
सो सीइंग अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव हैड सो मेनी बर्थ्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वी कैन नॉट इवन बिगिन टू काउंट देम, नॉट जस्ट द प्रीवियस लाइफ or two lives before, or three lives before. It can be crores and crores and crores of lives we've had mixing in these 84 lakhs of species.
तो जो 84 लाख योनियों में हम असंख्य जन्म ले चुके हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म हम ले चुके हैं यहाँ पर.
And we will still be subjected. Prakriti stani karshati. Karshati means a great struggle. And prakriti means with this material nature. So this maya vyakshena prakriti suyate sa chara chara bhetana nena kunteya prakriti stani karshati. We don't want to stay in this material world and continue to suffer life after life.
To hum jis prakriti ke saath, bhautik prakriti ke saath itna sangharsh hamara chal raha hai, to hum is bhautik prakriti mein nahi rehna chahte.
So human life is meant for parivartana, transformation in our thinking.
तो मनुष्य जीवन मिला है परिवर्तन के लिए, परिवर्तन हमारी सोच में.
Materialistic thinking is easy to describe. Materialistic thinking means I am here to enjoy and everything in this world is simply here for my pleasure.
भौतिक सोच का व्याख्या करना बहुत सरल है कि यहाँ पर मैं भोगता हूँ और इस सारी वस्तुएं मेरे भोगने के लिए हैं.
That was Hiranyakashipu's mentality.
ये हिरण्यकशिपु की मानसिकता है कि सब चीज मेरे लिए है.
And spiritual consciousness is exactly the opposite, 100 degrees different.
और जो आध्यात्मिक चेतना है वो 100% विपरीत है.
Spiritual consciousness means I am the eternal servant of Krishna. Everything is his property. Let me please satisfy him by some love and devotion.
आध्यात्मिक चेतना है कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ और यहाँ पे प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है, तो मैं उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करूँ.
So, final point is that the bhakti lata bij which is planted in the heart of every soul who approaches a pure devotee gives him the opportunity to grow his creeper of devotion.
तो जो भक्ति लता बीज है, जो शुद्ध भक्त की संगति से प्राप्त होता है, तो शुद्ध भक्त उस भक्ति लता बीज को सबको देकर उसको आगे बढ़ाने का अवसर सबको प्रदान करता है.
ब्रह्मांड ब्राह्मी थे कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण कृपा का भक्ति लता बीज. दैट भक्ति लता बीज इज व्हाट द गुरु गिव्स टू द डिसिपल And those are the instructions that he gives how to practice sadhana bhakti.
तो जो भक्ति लता बीच है गुरु अपने शिष्य को देता है और साथ ही निर्देश देते हैं कि उस भक्ति लता बीच से को कैसे आगे बढ़ाया जाए.
He gives practical guidance at the time of initiation. Do like this, don't do like that. That is the planting of the seed in the heart of the disciple.
और वो व्यवहारिक रूप से उनको अपने शिष्यों को गाइडेंस देता है कि इस प्रकार से करिए, इस प्रकार से मत करिए, और ये है भक्ति लता बीज.
And as we water and nourish our devotional creeper and pull out the unwanted things, then the creeper will grow very healthy.
और जैसे ही हम इस बीज का सिंचन करते हैं और जो अनावश्यक उसके आसपास खरपतवार है उनको हम निकालते हैं.
And when the creeper of devotion has expanded to the point where it has taken shelter at Krishna's lotus feet in the spiritual world, the fruits will be there on the devotional creeper, which means the fruit on the creeper of devotion is the pure desire in the heart of the jiva to please the senses of Krishna. That is the fruit on the creeper.
तो जब भक्ति लता बीज जब इतना बढ़ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का आश्रय ग्रहण करता है और इस पर फल लगते हैं, वो फल क्या है? एक जीव के हृदय में ये शुद्ध इच्छा कि मैं भगवान की इंद्रियों को तुष्ट कर सकूं.
Getting to the point where your only desire is to give pleasure to Krishna, that is not an easy thing to reach.
एक ऐसे स्तर पर पहुंचना जहां पर आपकी एकमात्र इच्छा हो कि सिर्फ मैं भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट कर सकूं, ये कोई असाधारण बात नहीं है, सरल चीज नहीं है.
So to make rapid progress, we must all be very much desirous of purification. In Sanskrit, it is called shuddhi kam. Kam means desire, and shuddhi means purification. We should all strongly desire purification of the heart.
और इस प्रगति को अगर हम बहुत तेजी से करना चाहते हैं, तो इसके लिए
shuddhi kam. Shuddhi kam means desiring to become pure, to have the heart cleansed.
Shuddhi kam, ki hum aisi ichha ho ki hum shuddhikaran kar saken.
So that is required, a strong desire for pure devotion for the pleasure of Krishna.
To ye vanchaniya hai ki ek प्रगाढ़ इच्छा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की.
So we must deeply remember that the family members that we have, especially the materialistic family members that may be there in one's family, and other associates that are materialistic people, they are not the most important person in the life of a devotee. Krishna is the only supreme important person in the life of a devotee.
तो इस बात को गहराई से स्मरण रखें कि जितने हमारे संबंध है संसार में, चाहे वो परिवार जन के ही क्यों ना हो, वो क्षणिक हैं और वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो संबंध है वो है भगवान कृष्ण से.
The word love does not, that means the actual word love means priti. This word priti, this love is not something that is relatable to materialistic people. That is simply that connection we have with materialistic people is simply a temporary sentiment.
तो जो प्रेम है या प्रीति जो शब्द है ये भौतिकवादी संबंधों पर लागू नहीं होता. वो हमारा बस कुछ क्षण के लिए कुछ भाव हो सकता है, परंतु जो प्रेम शब्द है ये उन पे लागू नहीं होता.
This is very important. Please don't lose this point. This is what we have to come to, and that is to understand that our materialistic relationships, whether it be neighbors or friends or co-workers or family members, our feelings of affection for them are temporary sentiment only. It is not an eternal feeling of love for them, because we'll be separated and forgive them entirely.
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखें कि जितने हमारे भौतिक इस जीवन में जितने भी संबंध है, जैसे परिवार जन से, पड़ोसियों से, अपने कार्यकर्ताओं से, तो इनके प्रति जितना ये भाव है, ये कोई प्रेम नहीं है, प्रेम शाश्वत होता है, और ये सारे जो हमारे संबंध है ये सब खत्म हो जाएंगे समय के साथ.
So we have to understand that prem, pure love of Krishna, that is where we will get complete satisfaction. We'll never be satisfied, fully satisfied, with the temporary sentiment for other living beings, because those relationships are temporary and they will be severed.
तो एक क्षणिक भाव से जो हमारे आसपास संबंधी है इनकी तरफ एक जो थोड़े समय के लिए कुछ हमारा एक सेंटीमेंट होता है, इससे जीवात्मा को पूर्ण संतुष्टता कभी नहीं मिलेगी. एक जीवात्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट सिर्फ भगवान से प्रेम करके ही हो सकती है.
So therefore, we have to make this life as successful as possible by sincerely and strongly desiring to purify the dirt from within our heart and mind.
तो इसलिए हमें इस जीवन को जितना यथासंभव सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए, गंभीरता से और सिंसियरली ये इच्छा करके.
एंड द सिंपलेस्ट वे टू प्यूरिफाई द माइंड एंड हार्ट इज बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. चैतो दार्पण मार्जन क्लिंजिंग द माइंड एंड द हार्ट बाय द होली नेम ऑफ द लॉर्ड.
मन और हृदय को शुद्ध करने का सबसे सरल तरीका हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है और सुनना.
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर said that chanting the holy names of Krishna is the key. Congregational chanting of the holy name of Krishna is the king of sadhanas.
श्रील रूप गोस्वामी
Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, congregational chanting of the holy name of Krishna is the king of sadhanas.
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur कहते हैं कि जो साधना का राजा है वो है जब हम सामूहिक इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं.
He said, let me just see if I can string it all together. He says, congregational chanting of Krishna's holy name is the king of sadhana. It is the only infallible sadhana capable to bring us to perfection.
ये एकमात्र ऐसी जो अचूत्य साधना है जो हमें सिद्धि तक ला सकती है.
He said, Lord Chaitanya Mahaprabhu in his Shikshastika did not teach us deity worship, he simply taught us to chant.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में हमें अच विग्रह नहीं सिखाया, उन्होंने हमें एकमात्र चीज सिखाई कि इसका जप कीजिए.
शिक्षाष्टकम there are 8 prayers and 4 of the 8, half of them are about chanting.
शिक्षाष्टकम में 8 श्लोक है, 50% 4 श्लोकों में से जप के ऊपर है.
So we have to take advantage of Mahaprabhu's mercy who freely distributed the holy name of Krishna. Golok Air, Premadan, Hari Nam Sankirtan, and perform as much as possible this Hari Nam Sankirtan.
Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jo kripa, jo unhone purn roop se vitrit kiya, isko grahan kare aur isko aage baate.
Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki, Gaura Premanandi.
Isprit Saripad Prabhupada ki.